शिक्षार्थमेकं पुरुषपुराणम्। पूरे विश्व महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो कभी कहते हैं दया विद्या निज भक्ति जो को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुत्र जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु भक्त जत दया के प्रसार, इसलिए इनका स्तुति में इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नमो गौरवीश्वराय साक्षात वैराग्य। कहते इनका मूर्ति क्या था, कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है। इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है, इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ रघुनाथ वैराग्य जना पाषाण रेखा। उसी तरह इनका अंदर भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इनके अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है। ऊपर का जो उनका बैस है और दूसरे दूसरे वैराग्य का तात्पर्य होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है, इसलिए साक्षात वैराग्य होता है। कहते पिप्र लंब रसाम बोधे, कहते वैराग्य विशेष अनुराग कैसे था, कहते पिप्र लंब रस था, ये साक्षात बुद्धिमान थे। इसलिए सबे हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोथाए वो प्रेम भई राधे राधे, यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था। सब समय कोथाए वो प्रेम भई राधे राधे बोल के कीर्तन करते थे और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा, इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे। इसलिए इनका सिक्का है उच्च स्वरे कर हरि नाम गाओ नामे प्रभाव स्मरण है वे सेकाले भजन निर्जन संभव। इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक सिक्का दिया है। इसलिए जो इसलिए कभी कभी उनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की शिक्षा दो अष्टकार्य लीला की हमें शिक्षा दो, लेकिन बाबा जी महाराज तो साक्षात सिद्ध पुरुष है उनको पता है ये अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वरूप की चिंता नहीं कर सकते, ये अष्टकार्य लीला स्मरण करने के अयोग्य है, इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है। इसे श्रीमद् भागवत में महा वैरागी धैर्या करे परापेक्षा अतैव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा, क्योंकि जो वैरागी है उनको विशेष करके लखन है रक्षी सती विश्वास और गोत्रते वर्णन कथा, उनको भगवान को ऊपर में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखे कृष्णा विश्वास पालन भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे, तभी हम चीजों को विश्वास कर सकते हैं, तभी वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणागत। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैरागी के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया फिर तुम खाने के लिए क्यों चिंता करते हो, कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो नहीं स्थान होनी चाहिए, कहते क्यों भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने, हाँ इतना बड़ा पृथ्वी बनाने सोने के लिए कोई कमी है, जिसने कहा भैया सिर्फ पीने के लिए तो पानी चाहिए, इतने भगवान इतने जो गंगा जो बना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया तो भगवान क्यों इतना नदी भी बनाया, कहते ठीक है लेकिन हम सबको पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए, कहते क्यों भगवान अंजल नहीं दिया, ये अंजल दे दिया इसलिए पानी धर करते थी लोग, कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए, हाँ बिस्तरा चाहिए और सोने के लिए बगैर तकिया की तुरंत नींद आएगी, कहते क्यों भगवान ये हाथ नहीं दिया ये हाथ की सहारा से सो जाओ, कहते अगर जंगल में आप बोलते हो जंगल में रहकर भजन करेंगे अगर शेर आकर खा गया तो, कहते क्यों भगवान क्या अपना भक्त वत्सलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है, भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि यह जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बताए क्योंकि धन दुर्बल दुर्मंधारा जो धन के मतवाला है उनको पास में गिड़गिड़ा मिटा उनको पास में हाथ भरने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर निर्भर करके भगवान भजन करो भगवान संपूर्ण रूप से रखा करेंगे। क्योंकि यह जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताए ये एक एक वस्तु ये गौर किशनदास महाराज महाराज के जीवन में ये देखने को मिलता है। इसलिए गौर किशनदास महाराज तब रहते थे कहाँ पर कोई अच्छी जगह पर नहीं वो साधारण में कैथन में रहते थे। कहते क्यों कहते ये इसका मजबूत सही है हाँ लेकिन बाहर रहेंगे इससे लोग इनको आकर तंग करते थे जानते थे सिद्ध महात्मा इसलिए कभी कभी चारों तरफ में कांटा बिछवा मछली का कांटा चारों तरफ में बिछा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि बाबा मछली खाने वाला बाबा है कहते ये मछली का कांटा किनारे कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे विषय का जो गंध है कम से कम मेरे कान तक नहीं आएगा। इसलिए उन्हें इससे डर से वो पैखाना करते हुए जोर जोर से हल्ला कर सके। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्भय होकर के सिंह रूप में सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया ये महापुरुष का आशीर्वाद है और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है। इसलिए हमारे महात्मा जी को भी देखो कभी एक शहर है हमने बहुत सारी जगह में गए महाराज जी को देखा बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन दो तीन जगह में देखा कहीं भक्ति का विरोध कहीं मायावादी को बाद में किसी ने बोल दिया तो महाराज भी शेर जैसे एकदम उसको झपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे उसको एकदम उसका जो सिद्धांत को ऐसे चकनाचूर कर रहे थे डर रहा था महाराज को डर है नहीं। इसलिए ये गौर किशनदास महाराज महाराज परंपरा में समझो कि महाराज जी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है। इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है खबरदार वहां जाना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया सर्वप्रथम हुए श्री पार्वजा गोविंद मठ सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है। और प्रभुपाद किए गौर किशनदास महाराज महाराज का जैसे वेष है कौन सा वेष है कहते बाबा जी वेष है लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास वेष किया और संन्यास वेष लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशनदास महाराज महाराज ने कहा था जब मैं अपर शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण दिशा करके मेरे को गला फेंकना कम से कम रजत मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया। इसलिए जिस समय गौर किशनदास महाराज प्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा अगर इसको समाधि देंगे कम से कम लोग प्रणाम देंगे कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग एकत्रित हो गए प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। यदि वहां पर चार बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है उससे बड़े झगड़ा हुआ वहां पर पुलिस अफिसर लोग आ गए जो पुलिस अफिसर आए वहां पर प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं। तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये साक्षात महापुरुष है महाभागवत अप्राकृत अलग अगर इनको शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य ये त्यागी है और मैं भी उनके त्यागी शिष्य हूँ इनको कोई त्यागी महापुरुष ही समाधि दे सकता है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं यदि बाबा जी वैसे है चल ऊपर से केवल बाबा जी वैसे गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है एक साल के अंदर में अगर किसी ने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया वो आ करके इनको समाधि दे नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके राख बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कहाँ गए जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार किए उनको पीछे पीछे सरकने लगे। अगर एक साल में नहीं हो छह महीना के अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया किया है, अगर वे आकर के तो शरीर को समाज दे, इसको सुनते और कुछ बाबा की सर के अगर कहते हैं कि 6 महीना को अंदर में नहीं, अगर 1 महीना को अंदर में अगर किसी नहीं किया है और कुछ किसे गए ऐसे कोई फेरे नहीं कहते 15 दिन 1 सप्ताह लास्ट प्रभुपाद ने ये बताए 1 दिन पहले तक 1 रात के पहले तक मन में अगर इसने स्त्री को स्मरण नहीं किया, अगर इसे कोई व्यक्ति आए तो समाज से बोलते ही सभी को अवस्था खराब हो गया और एक एक किसे किसे सबके सब भी सर गए वहां पर जितना पुलिस अफसर थे वो दंड रह गए ऐसे ही सब साथ हुए। तो प्रभुपाद ने उनके शरीर को उन्होंने बताया था हमारे शरीर में रस्सी बांध करके वो लोग सोच रहे थे और कृष्णदास बाबा जी महाराज का निर्देश थे रस्सी बांध कर संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को इस फिसलते हुए ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनका गुरुदेव सोच भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, एक शुद्ध शिष्य के हृदय में भी शुद्ध पुरुष का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग किया, शरीर क्या है वैष्णव का शरीर अपराधित दिव्य है, इसलिए वो शरीर को महाप्रभु कितना आदर किया, अपना गोद में उठा कर होते हुए महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाधि देते अपना हस्त में महाप्रभु ने इतने आदर दिया वैष्णव शरीर को, उनको कोई रज की कोई नवोदित रज की उनको कमी है। जब 24 घंटा में नरेंद्र देव रूप में जो अंत वाले विलास को हृदय में चिंतन कर रहे हैं क्या कोई को रस से भी अलग है, संपूर्ण रजीरज है संपूर्ण अपराधिक कलव है, इसे महाप्रभु ने की आदत किया और इसे शरीर घिसड़ कर नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथों में ही वे उनको समाधि देते हैं, इसलिए प्रभुपाद का कुछ और कृष्णदास बाबा जी महाराज का कुछ लीला से आदेश से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती है। कहते तो नहीं प्रभुपाद वास्तव रूप में उनका शिष्य है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो अभिष्ट है शिक्षा खंड में अभिष्ट गौर किशोर बाबा जी महाराज का अभिष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठित किया। उनने कहा कलकत्ता में नहीं जाना, अगर कोई भागवतर गोड़े मठ मायापुर में नव मठ को जगत में मठ स्थापन नहीं करते, अभी हम लोग जो पापी शरीर पापी कीड़े शरीर कीड़े हैं, कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सूचक मिल रहे कभी हमें सूचक मिल सकता था। गौर किशोरदास बाबा महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है निष्क्रिय रूप में प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं ये कभी हो सकता था। तो क्या गुरु क्या चाहते हैं, गुरु जी का क्या इच्छा है, गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जय कुतले, चैतन्य महाप्रभु का मन अभिष्ट है। महाप्रभु का मन अभिष्ट क्या है, महाप्रभु का मन अभिष्ट है प्रति भरे भरे किया स्वर एक ही क्या बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या, महाप्रभु का यही आदेश है। या वही ना बोले में ना बुलाए यार पृथ्वी पे आशीर्वाद नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है वे मरना, ये महाप्रभु का यही मन अभिष्ट है। अगर यह मन अभिष्ट को किसने जगत में स्थापन किया तो किसने स्थापन किया है श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अभिष्ट ही नहीं, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाच हो रहे सब कृष्ण कीर्तन में सब मधुआला हो रहे, किसका कृपा है ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु पर प्रकार की कृपा है, इसलिए उनका वो कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए। उनको एक समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपूर्ण धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके धारवाड़ के कई प्रभुपाद को पास में आए जो कि अत्यंत भयाद रूप में रहने वाले किसी तरह से काम करके इसको देख के बने आए ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतना भैया धोती इतने भैया कपड़े और हर बात सर क्या बात है, कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो, कहते यही बस नहीं बस क्यों, कहते कुछ बाबा जी लोग बाबा जी जो बैराग का बेस लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिए हुए बाबा जी का बेस कर रहे हैं बड़े गति गति का, उससे तो अच्छा है अच्छे बेस में खाड़ वाड़ कर रहा करो और भगवान से भजन करो। इसलिए मैंने ये सीखा किया किस समय किसी सिक्के के ऊपर में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लिया था, उसको देख लिया था। तो जब वो सांप चला गया, स्त्री आकर बोले, बाबा जी महाराज, हमने देखा है एक सांप इस चीके के ऊपर चढ़े और मुंह लगाया, खबरदार खाना नहीं बजाओगे। इतने में गौतम दास बाबा जी महाराज इतने बिगड़ गए उसके ऊपर में, बोले तू यहाँ से चले जा सत्यानाशी, यहाँ पर किस लिए आए, क्या करने के लिए आए, भाग यहाँ से। अगर मेरे को सांप खा जाए तो अच्छा, लेकिन तू नहीं खा जा। इसलिए वहां पर गौरकिशोरदास महाराज हमारा सिक्का देते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कहते सनई सनई, कहते धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते हैं साधु को पास में, आ करके धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 चित्त बद्ध होते ही है, धीरे धीरे सेवा पाप पा करके उसको प्रति हो जाता है स्त्री भावना। भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया चल जाता है। इसलिए गौरकिशोरदास महाराज महाराज ने सिखा दिया किया, हाँ अंत अंत विश्व भक्षण अपि असाधु, कहते चहर खाने पर कहते एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन अगर किसने माया में फंस गया तो कहते एक जीवन किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है। इतने जोर जबरदस्ती उसके ऊपर में माया की संस्कार बढ़ता है, एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म घटना के अनुसार लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे, भजन करने वालों को कितने दूर रहना चाहिए माया से, यहाँ पर गौरकिशोरदास महाराज अपना जीवन चरित्र सिखा देते। इसलिए आज उनका तिरुभाव है, वे अपना जीवन में जो सिखा दिया बहुत कठिन है उनको सिखा ग्रहण करना, एक शुद्ध बजाय है। इसलिए हम गुरु जी के चरण में गौरकिशोरदास महाराज कुमार के चरण में प्रार्थना करते हैं, वे हम लोगों पर आशीर्वाद कृपा करें, किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेकर के हम अपना जीवन में भजन साधन में कुछ कर सकें। वंशा को
disappearance day of Nityananda Prabhu Vishnupad Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj is a very wonderful opportunity to remember the qualities of a Mahabhagavat Rasi Vaishnava who lived within the holy Dham, Srinadadeep Dham, completely immersed in the eternal pastimes of the Lord, but yet interacting within this world externally, performing the activities of a sadhaka, although siddha, mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six Goswamis, also they perform their internal bhajan, and internally they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally they were also showing Sakya Purva Kadama Dana Dhatavi Kalava Sani Kito Nitrahara Vihara Kali Vijito Chaktyam Purvinama Chayo. So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand in the case of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, that we say he was sakshat vairagya gurukai. He was directly the embodiment of vairagya. But this vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this vairagya was the result of his extreme moods of viparamba, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj's renunciation, it was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam-bhajan and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Nandavid Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a bhajanandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gosthiyanandi, which his great disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, performed. But they were, of course, on the same level. The difference between bhajanandi and Gosthiyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottama Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth in our Rupa Guru Varga, who very extensively preached. But all were on the same level, actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Ostiananti or Vajananti. So Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices by his, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice, he would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There was one incident about a young Babaji who came, and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul, because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition, and therefore he is acting as his real friend. But unfortunately, the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. Sometimes when he hears such words which may cut into his heart, that he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform non-bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually your material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvipa as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him, and they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandri Chakra. Munindra Chandra Gandhi. He was a very powerful royal figure, landowner, but he was also like a king, and he was a Vaishnava. And he had appreciation for the association of the sadhus. So he wanted to invite Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj to come to a very great conference. He was trying to organize a Vaishnava conference. So he wanted that Babaji Maharaj will leave the Navadvipa, and he will come there and reside in his palace for some days, and he will attend this Vaishnava conference. So he was begging him and insisting, please Babaji Maharaj, come, come. So then at that time, Babaji Maharaj told this Manindra Chandranandi, he told him that if I go there, first of all, I will have to leave Govardhan. I will have to leave this eternal Dham of my Vishwambhava, my Mahaprabhu. And then I may come there to your palace. And receiving very nice facilities at your palace, such as very nice bedding, very nice food, and so forth, I may become somewhat attached to these things. And gradually, I will become more and more attached, and I may start to see you as my competitor. That, oh, you have so much and I have so little. And therefore, I will make them an offense against you, that you are a Vaishnava and a Vaishnava king. So I prefer that this will not happen. I want to have a very loving relationship with you. I want to continue to cultivate your bhakti in your association. So it is better that instead of my going to your palace, that you should give up your palace, all of your wealth, and you should come here and reside with me on the banks of the Ganga and accept the path of renunciation, and together we will hear Harikatha and we will enjoy the taste of the bliss of pure bhakti. So Manindra Chakra Nandi, of course, he did not accept this advice. But nevertheless, Gopisharadas Babaji Maharaj, he was always being very direct. He would never mince his words, and he would try to give the best advice so that a person could easily give up their material attachments. So Srila Babaji Maharaj, in many circumstances, his life was an example to show that in anyone who is residing in the holy Dham of the Supreme Lord, they must not commit offense against the holy Dham. They must not maintain their material attachments and come to the holy Dham, bringing the same material attachments that they have in their ordinary family life. But if they want to come to the Dham and actually reside in the Dham, well, then they should actually follow this path that he was showing by his own example of total renunciation of the mundane sense gratification and completely absorbing oneself 24 hours daily in hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Lord. So, this example, if it is not shown by the Mahabhagavata Vaishnavas, well then, how will the ordinary mass of people know what to do? Because everyone within this material world is in a diseased condition. They do not know what is beneficial for them. But when they come into the association of a great, pure Vaishnava, that Vaishnava can immediately detect, just like the most expert doctor who takes the pulse, can immediately detect what is the best medicine for that individual, and they can prescribe and give them all benefit. So Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, in our disciple succession, he is the very, very great, powerful Mahabhagavat, who is the spiritual master of our Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And although Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj, from an external point of view, from a material level, he was not educated and even illiterate. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, on the other hand, he was the most educated person, most highly intellectual, literate person, greatest intellect, powerful personality. But he submitted himself at the lotus feet of Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj and begged him for initiation. And when he submitted himself by the order of Bhakti Ram Thakur that he should go there, Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj said that, "I am not qualified to give you. You are a very exalted personality. And but I am just from an ordinary level, so I cannot give you initiation." And Bhaktisiddhanta Saraswati was crying at his lotus feet. And finally, after repeated attempts, then finally Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he agreed to accept Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of the Sangha in this world. And he told us he completely removed any kind of false ego that I have. And I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciple succession, all of our Guru Parampara, they are of this level. They are the Maha-Maha-Bhagavas, and they are Rupa-Rupa Vaishnava, Rasi Vaishnavas, down to the present day, coming down in our mind to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Prabhupada Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, who all have gone to the University of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy in the message of Chaitanya Mahaprabhu. So shout out to this lotus feet, and then that we can become servants of his lotus feet, and become servant of the servant of the servant of Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj.
और एक होता है याद रखिए विशेष रात अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति उन रात और विशेष करके जिस प्रकार ब्रजवासी अपने इष्ट देव के प्रति इस प्रकार रात उसी प्रकार आदि धर्म को बैठा को विशेष रात इसके बदले बैठा ब्रजवासी जन विराज की विभूति ब्रजवासी जनादि सुख विशेष इस मुक्त रात ब्रजवास में दिखाई पड़े हम देखते हैं गुरुदास बाबाजी और महाराज ने ये विशेष रात इस प्रकार में जैसे अभी अगर जो श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भी प्रणव भाव से भजन करते उठाए को प्रेम वही राधे राधे तुम्हारे तला तुम्हारे डाके राधे राधे गोसाई एक बार डाके तुम्हारे बने एक बार डाके निधि बने किस प्रकार वैराग्य होकर के चाहे कैसे तन्मय होकर के भजन करते थे वही की भजन आदर्श यह प्रति उद्देश्य वही प्रकार
चलती रही और पश्चिम तट पर
फिर दो तीन दिन के बाद वो समाधि समाधि के लेकर गए और नाम संकीर्तन जप से और अपने गुरु भाई श्री कृष्ण के साथ और मायापुर में और राधापुर निकेतन पर उनके समाधि। किंतु कुछ बाबा जी समझ लिया लोग उन्होंने विनोदारी ब्रह्मचारी के ऊपर केस लगाया लक्ष्मण लगाया जे ये अवैध है समाधि के क्यों उठाया जा सके केस दायर कर दिया। उस समय इंग्लिश अंग्रेज शासन है ब्रिटिश शासन है उस समय जो ब्रिटिश जज था वो ईसाई था क्रिश्चियन और उस क्रिश्चियन के हाथ में यही केस लगाया और इस समाधि को क्यों उठाया इसके दंड होनी चाहिए। उस समय ईसाई के धर्म के पुरुष था और जो लोग समाधि के उठाते हैं धर्मांतरित करते हैं उसके उचित और कठोर दंड दिया जाता है। और इसी प्रकार वो जज उन्होंने विचार करके जो विरोध बिहारी प्रमुख के कठोर कारादंड दिया गया इस प्रकार रखा है। किंतु जिस दिन उनके सवाल हुई उस समय विरोध बिहारी ब्रह्मचारी और इतने सुंदर रूप से उस जल साहब के निकट ऐसे बोले ये हम लोग ईसाई नहीं है हम लोग मुस्लिम नहीं है हम लोग भारतीय हिंदू है हिंदू धर्म के आयन के अनुसार और हिंदू धर्म में यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो वह समाधि के जो है स्थानांतर की जाए। और इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रमाण भी दिखा जिनके वकील लोग जिसके सवाल कर नहीं सके और विरोध बिहारी ब्रह्मचारी उस ईसाई अर्थात क्रिश्चियन जग साहब के निकट इतने सुंदर प्रमाण आदि देकर के रखा और देकर के वो ईसाई जज अपने मत जो बदला और बदला करके और यदि विरोध बिहारी ब्रह्मचारी के हरास कर दिया अर्थात उनके दंड लिया मुक्त कर दिया। और इसी प्रकार विरोध बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के जो है और विस्तृत और इसी कथा को जब प्रभुपाद के निकट जब पहुंचे प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद विरोध बिहारी ब्रह्मचारी के इसी प्रकार आशीर्वाद कर रहे। इसमें शिक्षा ये भी है हम लोग देखते हैं गुरु में गुरुपाद में जो कुछ भी है सब कुछ अपराधिक है। जिस प्रकार विरोध बिहारी ब्रह्मचारी जगत ने यह प्रतीक्षा की किस प्रकार गुरुदेव के वरिष्ठ स्थापित कर हम लोग सोचते हैं ये सब कर्म है किंतु ये कर्म नहीं है। कुछ लोग कर्म आते हैं प्रसिद्ध बनाना झाड़ू देना ये सब कर्म कहते हैं किंतु ये सब कर्म नहीं है। गुरु बाप के सेवा ही हम लोग के मूल है। किस प्रकार गुरु बाप के वरिष्ठ स्थापित करना है दो चार श्लोक सीख लिया बहुविता देख लिया कैसा सब में बैठ गया ये कोई बात नहीं है। गुरु बाप के वरिष्ठ स्थापित करना ही इसी प्रकार प्रभुपाद अपने गुरु बाप के समाधि और उसी स्थल पर राधाकुंड पर मायापुर में जो राधाकुंड स्थापित थी उसी के स्थान पर प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव के समाधि और उसी समय प्रभुपाद जो प्राणी भाषा में और अपने गुरुपाद के अपने नाम भी कीर्तन कर रहे और सबके आंसू भर रहे और सबके हृदय विलुप्त हो गया। इसी प्रकार विरोध बिहारी ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव के मनोभिष्ट और अपने परम गुरु महाराज जी की मनोभिष्ट पूर्ति की। इसलिए आज यही लक्षण सुबह भाषण पर हम लोग आए हम लोग कुछ बने आज सबने ऐसे गुरुदेव परम गुरुदेव की हम लोग परमिष्ट स्थापित करें परिचाल गुरुदेव का
एक समय गौर शोकदाली महाराज अर्धरात्रि समय उनको और अन्य और बावला वृक्ष तारी साटा उनको रास्ता में चल और आधी रात के समय पे मायापुर उपस्थित हुए चर्चा कर पड़ा मारे बालक हमारे ऐसा नहीं कोई वहां पर उनके पास में आ जाता अवैध नारायण अपनी अनुग्रह पर
আমি একটি কৃষ্ণ দাসী সংগ্রহ করেছি, মানে বিবাহ করে এসেছে, বলছেন যে আপনি বিবাহ করেন, আমরা সুখে বিষয় করে করি এই ভাব। তো কৃষ্ণ দাস আমার মারা শুনে বললেন, বেশ ভালো, বেশ ভালো, তুমি কৃষ্ণ দাসী সংগ্রহ করেছেন, খবরদার ও বুদ্ধি কমার হাতে তুমি বড়। তাকে রোজ পূজা করো, কৃষ্ণ দাসী তো আমাদের খবরদার তাকে প্রতিদিন পূজা ত্যাগী করে দিয়ে তার সব প্রকারের সেবা। আর प्रभुपाद के दो आदेश को प्रभुपाद जी ने लंघन किया, नहीं माना, कड़ी के स्थान में मत जाना, और प्रभुपाद जी ने वहीं पर सबसे पहले और एक लंघन किया। उन्होंने कहा था गौतम सोमदास बाबा जी महाराज, क्या मैं शरीर छोड़ दूं, हमारे शरीर में पैर में रस्सी बांध करके गली गली घुमा करके पंखा में रूपा नहीं, इसको भी नहीं माना। कौन सी तो ऐसे मालूम होता है कि गुरु जी का आदेश नहीं पालन किया। बहुत समय में ऐसा होता है, भावों को समझ कर उनकी पीड़ा तभी सुनी, भावना को समझ करके गुरु के आदेश उल्लंघन करके मालूम होता है उसके विपरीत करना, एक यथार्थ में नरोत्तम ठाकुर की अपने गुरु जी भजन कर रहे थे और एक आदमी जिन्होंने पानी पिला दिया, जब पानी पिलाओ देश में हस्तकालीय भजन में हमारी रुचि नहीं है तो उसको नहीं समझते। तो उस समय किसी तरह से उनको समान नहीं, जब इनको अपने देश में आकर के उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणी बना, इसलिए कभी कभी गुरु के विचारों को समझना चाहिए और समझ करके तर्क का पालन करना। महाभारत में भी ऐसा देखा है, वहां पर भी अर्जुन ने कृष्ण की बात को नहीं माना, अर्जुन कृष्ण ने कहा मारो इसको और बताई, और द्रौपदी ने कहा भीम ने कहा इसको मार, और कृष्ण ने कहा अवताई का बहुत अभिमानी, और उस समय में अर्जुन ने यज्ञ करके मुद्रण करके पांच सीता करके उसका वाचन। इसलिए कभी कभी गुरु पर्वों का विचार समझना वास्तव में कठिन होता है, किंतु सच शिष्य हम लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिक्षा शिष्य है कौन, जो उनके समस्त आदेशों को जान बूझ करके पालन कर। यदि कोई गुरु से ही तर्क वितर्क करने लग जाए तो शिष्य है, उसकी सिद्धियों में कभी संभव नहीं है। इन सब चीजों को विचार करके बहुत काल किशोरदास बाबा जी करते करो संकीर्ण के बाद के लिए आज के विश्व में।
हम लोग भी सभी को उनके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी रेडी तेरह मिनट को देखो,
आपने बताया सत्रह घंटे पहले आपके साथ गजावर महाराज के पास हम लोग गए थे, तो गजावर महाराज बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में कि और जो अपने बता पली के स्थान कलकत्ता मत जाना, पहले बहुत कलकत्ता में स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अवधि में कहूँ धाम का सेवा नहीं कर सका, फिर पैर में रस्सी बांध करके घुमा कर गंगा में फेंकना, पैर में रस्सी बांध कर नवदी में घुमा कर गंगा में फेंक देना, उनको अर्थ बताया था। उन्होंने आदेश झगीचा निया अभिचारणिया मित्र निश्चित रूप में और मतलब अवसर रूप में विचार करके करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया उनका अर्थ क्या है, कलिंग के स्थान के जी को पहले उद्धार करो, ये भाव को लेकर के पहले कलकत्ता में स्थापन किया। और जब लोग आपको बताया नौ योग जस्मात सौ इसी अयोग्य, इसे समाज को जो वही नहीं सकता ये अयोग्य है, और इसलिए उनको अर्थ लेकर के पहले उसे मांगा, मुझे धन्यवाद मैंने बताया।
Please be ready for the drama.
Good afternoon. You are ready?
So today is the disappearance of Sri Gaurishandas Goswami Maharaj. Some pastimes that we heard that Sri Gaurishandas Babaji Maharaj was blind, appeared like he was blind. But in the middle of the night, he came to Mayapur and Prabhupada, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur asked, "Oh Gurudev, how did you come here? Because the road was full of thorns, there was no boats, also there were thorn trees everywhere." And Bhakti Maharaj said, "I don't know, some boy took me. Some boy took me across." One time also, one person came to see Gaurishandas Babaji Maharaj and said, "Oh, look, I have brought one Krishna Dasi, one maidservant of Krishna." Then Babaji Maharaj said like fire, "Oh, be careful. Don't try and enjoy her and you'll be completely destroyed. You should serve her every day. You should cook for her and you should worship her." And that man became afraid and ran. We see it. The order of the Guru should never be disobeyed. But it appears that she Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur then disobeyed two orders of his Guru. Sri Gaurishandas Babaji Maharaj said, "You should never go to Calcutta. And also, after I have left this world, you should tie my feet to the horse and drag me through the streets of Nabari, and yet you should throw my body in the Ganga." Therefore, it is very difficult to understand the mind of the Guru. For example, Sri Narottam Das Thakur, as he was chanting with his Guru, one man came and asked for a glass of water. And Sri Narottam Das left his Harinam and gave water to that man. His Gurudev, Lokanath Goswami, became very angry and said, "Oh, you have no taste for remembering the Adhikali Leela of Radhakrishna. You should go back home and distribute water there." And in no case would he forgive Narottam Das Thakur. So Narottam Das Thakur, understanding the order of his Guru, he preached the Vani of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. Therefore, sometimes we think we understand the order or the instruction of Guru, but it's not so easy to understand. Only a Satshishya, only a bona fide disciple can understand the innermost intention of the Guru. Even we see in Mahabharata, sometimes it is like that. Aswatthama had killed the sons of Draupadi, therefore he was captured. Bhimsen was saying, "You must kill him." Bhimsen was saying to Krishna, "You must kill him." And Krishna said, "Yes, also, an enemy must be killed anyway, there is no doubt." But Yudhisthira, on the other hand, and Draupadi were begging for forgiveness. Therefore Krishna said to Arjuna, "Do as you think, you should kill him and not kill him." To Jayadratha, "You should kill him and not kill him." Therefore, what did Arjuna, he could understand the mind of Arjuna, of Krishna, devil shaved his head and disrespected him, thereby killing him, by dishonoring him, and not killing him, by leaving him alive. Therefore, we hear that the main duty of the disciple, of the Shiksha Diksha disciple, is to follow the order of Gurudev without any twisting, without any changing, without any deliberation. If the disciple begins to argue with the Guru, no, it should be like that, it should be like this, then where is the question of him being disciple? Therefore, to really understand this thing is very difficult, and only such as you can understand how Prabhupada really followed the order of Sri Gaurava Saraswati Maharaj. Pujamat Madhavaj said, Pujamat Madhavaj explaining that Sri Saraswati Thakur, he never went to the place of Kali. He went there and removed Kali and established the worship of Radha Krishna in Calcutta. Therefore, he fulfilled the Manavis, the innermost intention of his Gurudev.
आपनारायण काल में पढ़ना की जाई प्रवर्तन है देखो प्रणामी मिया थे सब कल आप लोग प्रवर्तन की पंडा को जाई करने के लिए उनका प्रणामी का रुपया साथ में ले आएंगे सकाल पे इन द मॉर्निंग ऑल डिवोटी शुड ब्रिंग सम प्रणामी फॉर द पंडा ऑफ So you should bring and will be good. Give it to
Hare Krishna.
Hare Krishna. Our last day of this Karti Mangali feast. So in the morning we finish our job. And wherever we have arranged our devotees in the guest house of Dharmasala, our time limit up to 5th up to lunch. So after lunch, we have to vacate all Dharmasala guest house. At 2:30 p.m., us will come to take you Vrindavan. After the camera is live, you can go. So whoever wants to go Vrindavan, they can register their name Vrindavan here to arrange bus. Outside is a big board, they can put their name for the buses. In the record, we have to arrange bus accordingly. Tomorrow morning, and now I have to finish according to name will arrange buses. Later on, you can arrange bus, and whoever wants to stay there by own, they own, they can stay their own, they can contact with guest house and Dharmasala and other place. Only we can arrange bus, only sleep, not on that day. So whoever wants to stay longer, they have to arrange their own, they have their own arrangement. We are not responsible for that. So please register your name just after class on the board and tomorrow morning. We have to arrange bus, have to order bus tomorrow morning by 9. So, and 6 will be over in Anandadham, who will be in Vrindavan, they can attend Anandadham Parikrama. On 6th November, Hare Krishna. Thank you for your cooperation. Anandham program will be 3 p.m. in Vrindavan. And after Parikrama will be Prasad also there in Anandham.
Hare Krishna. We are going to help you, Father. The names of all the devotees who received initiation will be announced just now. On the 27th, Mr. Gill from Mumbai. His name is Jagannath Das. On the other of the DDLO, Amam Krishna Das from California.
Ramakrishna
Das from Italy.
Seven.
Yudhavir Das from Russia.
Jadubar. Jadubar Das.
All this is not.
No, they're not actually.
Yeah. Olga Gerasimo.
Russia. Gandharva.
Naresh Kumar.
Alok Das from Raman Bihari Gaudiamar. Asim Krishna Das.
Naresh Kumar from Mathura.
Same Naresh Das.
Mahavir Prashad Singhal.
Same name, Mahavir Prasad.
Gauri Gaur Shankar from Gaurda.
They're
not here. Abhiram Das.
Vrindavan. Same name, Abhiram Das.
Yudha of Vienna from Australia.
Malati Dasi.
Radha Chauda.
Chauhan. Same name, Radha Prasad Das.
Rahul Sobhas.
Same name.
Vashvi Bala, Kanda. Umberto Mercolini, Costa Rica. Hemant Das. Holly Hepburn, England. Premvati Dasi. Ganga Dasi from Badger. Same name, Ganga Dasi. On the second today, Ashini Marina. Martin Neal from Tel Aviv, Israel. Nandan Das Kanak Laza from Russia. Same name Kanak Laza. Vijay Singh from Mathura. Rajesh Das Narvada. Narvada Bai from Auckland. Narvada Devi. Amal Krishna Das from USA. Same name. Sunil Gautam from Mathura, Supananda Das. Lydia Williams from UK, Lasika Dasi. Sudeep Dasi from Dusseldorf, receiving Diksha. Anup Krishna Das. Anup Das. Rajesh Pare. Rajesh Das from Jaipur. Induleka Dasi from Russia, receiving Diksha, same name. Suchitra Dasi. From England, Bolivia, same name. Gadhadhar Das Karun from Giridhar Gaudiamar. Diksha, same name. Uma Devi Dasi from Russia, same name. Rajesh Pare. Madhubala Pare, same name. From Ranganath Gaudiamar Bangalore, Balaram Mandal. Brahmachari, same name. Sudam Mandal, same name. Suraj Saka, Sudarshan Brahmachari. Bhanu Prakash, Vrishabhanu Das. Shivan Kumar, Shivananda Brahmachari. Gautam Gunaraj Brahmachari. Arun Kumar Ananta Brahmachari. Tushar Sardar, Tarun Krishna Brahmachari. Vedarani Vedarani Devi, Renuka, Renuka Devi, Lakshmi Madhav, Lakshmi Devi, Gopal Ghosh, Gopal Krishna Brahmachari, Nivarani, Nandarani Devi from Govardhan, Sumitra Dasi Govardhan, Sene, Umashankar Mishra, they never get to us. Uma Shankar Mishra and Kalavati Mishra, Sidi Karina. Same name. Ramadasi from USA, same name from Sidi Desha. Muni Toshkas, Murali Dalakas.
Muni Toshkas, Gokhan Manavasi, Murali Dalakas. Kanaipa. Komparna Gopalan Gaudiamar, Semlal Singh, Semlal Das, Jayaprakash Mishra, Jayagopal Das, Santosh Kumar, Sadhguru Sarvam Das, Hare Krishna.
Hare Krishna, one very brief announcement. You will all no doubt remember Gaurasundara Prabhu, our dear godbrother, who some time ago had a tragic accident in Puri, which left him paralyzed. I'm happy to announce an amazing story that, thanks to Gurudev's inspiration and strength, the Gaurasundara Prabhu, with the help of Shravan and the encouragement of Shravan and his friends, has decided to go out to the world and preach to the world via the internet on how Krishna consciousness has helped him endure and overcome the tragedy that he's undergone. And I also want to lastly announce that Shravan will have information about a website that's being launched, that where you can go and listen to him give classes and tell his story, and also where he will talk about Srila Gurudev and Srila Gurudev's preaching mission, and if you'd like, give some small donation to help him with his medical support. Thank you very much.
Thank you, Nat.
Hare Krishna. The Holy Soul, experienced and you are experts on web designing, please contact me today or tomorrow. We have some services for you. Those who are expert in web design.
Rajanath.
One more name further. One devotee from Bangalore. His name is Vasanta. Guru's name is Banbari Brahmachari. Vasanta from Bangalore. Banbari Brahmachari.
Rajanath.
Rama, please give me Rama.
Rajanath.
Hare Krishna. So the title of this drama is Vaishnava Aparad, the gravity of Vaishnava Aparad. One time, Srila Rupa Goswami was doing bhajan in the courtyard of Sri Sri Radha Damodar temple. He was meditating on the beautiful pastimes of Sri Sri Radha Krishna. That time, one Vaishnava named Khanji Krishnadas, who was lame and weeping, came in front of him. Srila Rupa Goswami did not know that he has come in front of him. Being absorbed and remembering Srila Radha Krishna's divine pastime, he laughed loudly. He remembered the pastime at Kusum Sarovar. And then Khanji Krishnadas thought that Rupa Goswami was laughing at him. And thus, Rupa Goswami's meditation broke, and he could not remember Srila Radha Krishna's pastime. Later on, when Sanatana Goswami, the Shiksha Guru of Rupa Goswami, came to meet him, Rupa Goswami inquired from Sanatana Goswami the reason why he is not able to engage in Lila Smaran. Sanatana Goswami told him that he may have committed an offense to some devotee of the Lord, and he should arrange for a great Bhatara or a feast. And if any Vaishnava turns down the invitation, then we should understand that he has offended that particular Vaishnava. So then Rupa Goswami did exactly the same, and he found that Khanji Krishnadas was apparently offended. So this is actually the story which Gurudev also said. This shows the severity of Vaishnava. Abhi hum jo natak prastut karne ja rahe hain, iska naam hai Vaishnava. Vaishnava ka gurutva itna bada hai. और वैष्णव अपराध से क्या क्या समस्या जीवन में आ सकती है, इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक किंवदंती है कि रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर के प्रांगण में भजन कर रहे थे तमाम वृक्ष के नीचे। उस वक्त वो लीला स्मरण में मग्न थे। राधा कृष्ण की दिव्य लीला जो उत्सव स्थलों में घटित हुई है उसको याद कर रहे थे। उस वक्त उनके सामने एक लंगड़े वैष्णव खंजी कृष्णदास आए। रूप गोस्वामी की आंखें बंद थी और वो लीला स्मरण में मग्न थे, इसलिए लंगड़े वैष्णव को देख न पाए और हंस पड़े। तो खंजी कृष्णदास जी ने इसके ऊपर अपराध किया और उस अपराध के कारण रूप गोस्वामी का भजन में मन लगना बंद हो गया, लीला स्मरण उनके सामने नहीं आ रहा था। जब उनके शिक्षक गुरु जी सनातन गोस्वामी और उनके गुरु बंधु सनातन गोस्वामी उनके पास आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि सनातन गोस्वामी हमें बताइए कि हम लीला स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा कि जरूर आपने कोई वैष्णव अपराध किया हो, जाने अजाने।
भंडारे में. इसलिए आप एक भंडारे का आयोजन करें और इस भंडारे में आने का आमंत्रण स्वीकार कर देगा उस वैष्णव शायद आपने अपराध किया हो. तो अभी देखिए नाटक वैष्णव अपराध.
मेरे इस करोड़ों रूप में करोड़ों करोड़ों जीवा होती तो मैं बस